सुखयः लेक्चर नंबर 18 ओम नमः सिद्धेय ओम नमः सिद्धेय ओम नमः सिद्धेय ओम शुद्धात्मने नमः नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोए सौवसाहूणं अज्ञानतिमिरांधानां ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सहजानंद जी रचित सुखयः नामक ये प्रथम पुस्तक है, उसमें पृष्ठ संख्या 76 पर हम आगे 76 पृष्ठ पहली लाइन यहाँ से पढ़ेंगे हम। 26 नंबर का जो उनका श्लोक है सहजानंद गीता का, जो उन्होंने स्वयं रचा है, उसकी बात अभी हम यहाँ पढ़ रहे थे। देखो फिर से हम 26 नंबर का श्लोक का अर्थ देखते हैं 75 पृष्ठ पर। कहा तो सहज आनंद में परिणाम,
संस्कृत पढ़ो तो अच्छा लगेगा।
ठीक है, सहजानंद भाव क्वे मेरागादिवैरिण, सहजानंद संपन्न स्याम स्वस्मै स्वे सुखी स्वयं। कहा तो सहज आनंदमय परिणाम और कहा ये राग आदि वैरी, उसके दोनों की कंपेरिजन करें।
हेलो
मैं तो निश्चय से स्वाभाविक सहजानंद से संपन्न हूँ, और वो हमें स्वभाव तो हमेशा ही रहेगा। पर्याय में राग है, परंतु वो तो राग आदि को वैरी कहा, क्योंकि वो दुखरूप भाव है। इसलिए मैं अपने में, अपने लिए, अपने आप सुखी हो, यानी यहाँ अपना जो आनंद स्वभाव है वो राग आदि परिणति है, उसका अंतर देखना है, अपने में नक्की करना है। अपने में ही उठने वाले ये भाव है वो दुखरूप भाव है, और हमें दुख उसी बात का है, और हम मानते कि संयोग उनका दुख है, और हम तो कैसे स्वाभाविक सहज आनंदमय है। देखो फिर पढ़ लेते अभी इतना ही। मेरा सहज आनंद स्वभाव है, उस आनंद स्वरूप में जो करता हूँ वह मैं हूँ। यदि राग में वैरी व्यभिचारी भाव नहीं उठा तो आनंद में कमी नहीं हो सकती। राग में कहो या राग नामक जो वैरी भाव नहीं उठा तो आनंद में कोई कमी होने की सवाल नहीं उसका। परंतु जो इनमें किसी विकार में झुक गया ने उसके उसको अधिकता लगती है, उस रूप मैं हूँ मानता है, उससे अपना कल्याण होगा मानता है, वह आकुलित ही होता है आत्मन। देखो ये राग भाव कर रहा है और मिथ्या दृष्टि उसको करने जैसा भी मान रहा है, हमने उसको अच्छा मजा से चखाया कहते हैं ना किसी के, उसमें वो अच्छा मानता भी है, करता भी बन रहा है, वो करने जैसा मान रहा है। उसको नहीं डांटते तो ऐसा ही करेगा, ये नौकर है ना, उसको ऐसा डांटना ही चाहिए, ऐसे है ना, ये तो उसके अभिप्राय में पड़ा है। बच्चों को बिल्कुल ठीक ठाक रखने के लिए उनको बराबर कंट्रोल में रखो, उनको जरा मारो डांटो, ये क्या है
एक प्रकार से द्वेष।
हाँ, यानी वो करने जैसा है, द्वेष या राग करने जैसा है ये मान लिया उसने, यानी वो दुखरूप भाव है ये ख्याल नहीं आता। भले वो सामने वाले जीव को कुछ सजा देना चाहता है कुछ भी, परंतु यहाँ जहाँ वो राग उठा है वो अपने लिए दुखदायक है ये नहीं समझता वो। आत्मन तू निज आनंद स्वभाव वो विकार परिणति, इनका अंतर तो देख, कहाँ तो इसका आनंद स्वभाव और कहाँ यह राग वेश। वो क्षणिक है, पर्याय पूर्ता है, और यहाँ पूरा आनंद स्वभाव तो परिपूर्ण है, और वो बहुत नहीं जैसा है, स्वभाव के सामने नहीं जैसा है, परंतु उसी में इतना वो रचा पचा है कि वो स्वभाव उसको दिखाई नहीं दे रहा है। राग को ही अपना स्वभाव मानकर बैठा है। यह राग भाव दुश्मन है, इस जीव का कोई बैरी है तो यही राग है, और कोई पदार्थ दुनिया में इस जीव का बैरी नहीं है। अपने आप में उठा विकार ही बुरा है और कोई बुरा नहीं। अन्य सब तो पदार्थ है, चेतन अचेतन पदार्थ, चेतन हो या अचेतन हो तो अन्य है, अपने से जुदे है, उनकी सत्ता न्यारी मेरी सत्ता न्यारी है। जो बाह्य दृष्टि करता है और बुरा समझता है उसे दुख है। यहाँ तक तो अपने पढ़ा था, अस्तित्व वस्तुत्व द्रव्यत्व प्रमेयत्व प्रदेशत्व व अगुरु लघुत्व, इन छह गुणों को लिए हुए पदार्थ है। ये छह गुणों को आशाबेन क्या कहते हैं? सामान्य गुण। तो क्या इतने ही है? अनंत है। ये मुख्यतः ये बताए, इनका स्वरूप समझेंगे तो पदार्थों का स्वरूप भी हमें निश्चित पता चल जाता है। तो कहते इनको लिए हुए नहीं, इन गुणों से युक्त ही पदार्थ है। कौन से पदार्थ है? जीव के पुद्गल। कौन से पदार्थ इन गुणों से युक्त है? जीव। जीव द्रव्य में ये गुण है कि पुद्गल में है? सभी में, क्योंकि सामान्य है ना, तो सभी द्रव्य में। वह भी एक वस्तु है। आप कहेंगे यह मेरे लिए खिलाफ परिणति कर रहा है, यानी कोई जीव या अन्य कोई मेरे विरुद्ध प्रवृत्ति कर रहा है, किसी जीव के कषाय के अनुकूल अपनी परिणति कर रहा है। किसी जीव को तू अपने से बुरा मत समझ, तेरा बुरा कोई नहीं है दुनिया में, वह तेरे खिलाफ नहीं परिणमन रहा, वह अपने कषाय के अनुकूल अपना परिणमन कर रहा है, अपने में वो उस कषाय रूप परिणमित हो रहा है। हाँ, वो तुम्हारे खिलाफ नहीं है, वो अपने जो जो कोई वैर भाव है, क्रोध भाव है, मान भाव है, तो अपने अपने कषाय रूप से परिणमित हो रहा है। वह तो उसके अपने कषाय का पोषण है। कोई तेरा बुरा नहीं है। क्योंकि मुनिराज के प्रति भी कोई ऐसा भाव रखते हैं तो फिर भी वो आनंद में रहते हैं, और ये मिथ्या दृष्टि जीव, अरे वो तो मेरा वैरी है, वो मेरा ऐसा बुरा करता है, ऐसा कर करके और उसके प्रति द्वेष करता है, उसको जो कैसे कहते ना, उसको अच्छा सिखाऊंगा, सबक सिखाऊंगा, मुझे वो मराठी शब्द आ रहा है, धड़ा धड़ा दिखाऊंगा। उसको सबक सिखाऊंगा। बधड़ाए ने मराठी में पाठ। हाँ हाँ, छहत्तर पेज 76। देखो अभी हमने चार पांच लाइन पढ़ी है, यहाँ ये बात हो रही है कि प्रत्येक द्रव्य में अपने अपने सामान्य गुण है, प्रत्येक द्रव्य अपने अपने में ही परिणमित हो रहा है, उसके रागादि परिणाम भी चल रहे हैं, तो अपने में ये जीव क्या सोचता है, वो मेरे विरुद्ध कुछ जैसे कोई जाल बुन रहा है, षड्यंत्र कर रहा है, वो मेरा वैरी है, तो कहते वो अपने कषाय के अनुकूल परिणमित हो रहा है। उसमें जो कोई क्रोध मान माया लोभ है, उस रूप वो परिणमित हो रहा है। ये हम मानते कि वो हमारे प्रति है, यही कह रहे। देखो ये तीसरी लाइन फिर पढ़ती हूँ, यहाँ 76 पेज। किसी जीव को तू अपने से बुरा मत समझ, तेरा बुरा कोई नहीं है दुनिया में, वह तेरे खिलाफ नहीं परिणमन रहा, जिसको हम बुरा मानते हैं वह अपने विरुद्ध नहीं परिणमन रहा, वह अपने कषाय के अनुकूल अपना परिणमन कर रहा है। वो तो स्वयं में अपने में परिणमित हो रहा है, वैसे वैसे कषाय कर रहा है। वह तो उसके अपने कषाय का पोषण है। कोई तेरा बुरा नहीं है, तेरा बुरा है राग भाव, यानी उसको कषाय देखकर हम कषायित होते, वो तो ये हमारे लिए बुरा है, वो क्या हमारा बुरा करेगा, क्योंकि उसका तो हमने कोई एंट्री ही नहीं है, हमारी सत्ता जुदी उसकी सत्ता जुदी है, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसके कषाय के कषाय को देखकर हम जो कषायित हो रहे हैं वो हमारे लिए बुरे हैं, ये कहना चाहते हैं। राग के कारण सर्वज्ञता का स्वभाव ढका हुआ होता है। राग इतनी क्षणिक पर्याय है, परंतु उसके पीछे इतना बड़ा स्वभाव है हमारा, कितना सर्वज्ञता का स्वभाव पड़ा है, हर समय हर पर्याय के पीछे है। परंतु ये पर्याय ऐसी हमें लगती है आच्छादित हो गई, जैसे हम उस रूप ही हो गए, इसलिए वो सर्वज्ञ स्वभाव दृष्टि में नहीं आ रहा है, ख्याल में नहीं आ रहा है, उस ओर हम देख नहीं रहे। यदि नक्की करेंगे कि मैं तो ज्ञान और आनंद का पिंड हूं और ये रागादि भाव दुख रूप है, तो ये मेरे नहीं हो सकते और ये आने जाने वाले परिणाम है, और मैं तो कायम रहने वाला ऐसा आनंद स्वभावी हूं। रागादि वैरी के निमित्त से ही तो देखो परमार्थ स्वभाव ढक गया। क्या कहते हैं, ये हमारे रागादि जो है वो हमारे वैरी है, उनके कारण हमारा ही परमार्थ से ये सर्वज्ञ स्वभाव ढका हुआ है। इससे बढ़कर वैरी और तेरा कौन हो सकता है, तेरा बुरा है राग, यानी इससे और अधिक अपना बुरा कौन क्या करेगा। ये बैरी जो लौकिक में कहेंगे वो शरीर को कोई इजा पहुंचेगा, मार डालेगा और क्या है, शरीर का वियोग होगा। तो ये तो ऐसा वैरी है कि अपने सर्व के स्वभाव को ही ढक लिया उसने, ये बात कहना चाहते हैं। यदि बैरी पर तुझे झुंझलाहट होती है तो तू अपने राग पर झुंझला, और कोई तेरा दुश्मन नहीं। राग तो इस जीव को बर्बाद करता है, राग एक पर्याय है, पराधीन है। क्यों पराधीन, क्योंकि उसमें कर्मों का उदय रहता है वहां पर, और वो हमारा स्वभाव भाव तो है ही नहीं है। ऐसे ही अपने षटकारक से उत्पन्न हुई तो उसमें निमित्त रूप से कर्म है, कर्मों का उदय है, कर्म के उदय से होता है, लिखा ना। तेरा स्वयं का कुछ अस्तित्व नहीं, यानी राग में हमारा अस्तित्व नहीं, कुछ अस्तित्व नहीं, हमारा अपने में अस्तित्व परिपूर्ण है, राग में हमारा अस्तित्व नहीं है। फिर तुझे तेरा ख्याल बर्बाद कर रहा है, यानी राग भाव जो है वो अपने को बर्बाद कर रहा है, क्योंकि हमने अपने को उस रूप माना है। अथवा मुझे कौन बर्बाद करता है, मैं ही अपनी आपकी कला से सुखी व दुखी हूँ, यानी सुखी या दुखी होना ही अपने हाथ की बात है, किसी पराधीन की ये बात नहीं है। जरा अपने स्वभाव में और इस पराधीन परिणति में अंतर तो देख। अंतर देखना यानी भेद देखना, भेद विज्ञान करना, यह है परिणति। पराधीन है, कर्मों के उदय के अधीन है, दूसरे को देख देख कर होती है, वो भी एक बात है उसमें। और स्वभाव तो अनादि से अनंत काल तक एक सदृश कायम रहने वाला स्वभाव भाव है, वो किसी के अधीन नहीं, स्वाधीन है। तो हमें दोनों का अंतर नक्की करना है, भेद विज्ञान करना है। एक अपने को देख, कुछ ही समय सही ऐसा उपयोग बना ले, इसका सारा सुख दुख अपने हाथ है, यह सब कुछ ज्ञान की कला के अधीन है। यानी ज्ञान में ही ऐसी विशेषता है कि वो अपने को सुखी बना सकता है, क्योंकि अपना ही जो सुख स्वभाव है उसी का लक्ष्य करना है। इस ज्ञान ने क्या किया अभी तक, सबको जाना, राग को भी जाना, परंतु केवल जानकर नहीं रहा, वो आगे बढ़कर अपने को राग में मानने भी लगा। जो लोग मानते हैं कि ईश्वर की जो इच्छा होती है कि मैं सृष्टि कर लूं, इतनी इच्छा करने से सब सृष्टि हो जाती है। सृष्टि कैसे बनती है, जगत में ये एक ईश्वर ही तो है, यह इच्छा करता है कि मैं ऐसा बन जाऊं तो हो जाता है, आखिर प्रभु का स्वरूप ही तो है। यानी ये अन्य मति मानते हैं, प्रभु की बात है सब, प्रभु ही सब कुछ करता है। इसकी प्रभुता विकार रूप में विकसित हो रही है, पर हे भैया जरा अपना स्वभाव तो देख, कुछ तो मेहरबानी कर अपने पर। दूसरे के उपकार करने के लिए बहुत तैयार है, सजग है, तो कहते जरा अपने ऊपर मेहरबानी तो कर। बहुत कुछ बर्बाद हुआ, बहुत मारा, बहुत मरा, बहुत मरा नहीं, क्योंकि अनंत भाव किए तो अनंत बार मरा, बहुत मरा, बहुत पीटा, कुछ तो अपने पर करुणा कर, इस दुनिया में तू अकेला है, तेरा कोई साथी नहीं। भ्रम जाल को भुला दे, ये भ्रम जाल भ्रमणा है, ये इमेजिनेशन केवल विकल्प, और उसका जाल बुनकर अपने में उसी में स्वयं फंस गया है। इसलिए कहते भ्रम जाल जो है उसको भुला दे, तेरा साथी केवल तू ही है। अगर अच्छे ढंग से चला तो स्वयं तेरा साथी तू है, अगर खराब ढंग से चला तो तू ही तेरा बुरा है, दूसरा कोई कुछ नहीं करता। अपने ही उस सहज आनंद को देख, यानी हमें स्वीकार करना है, उसको नक्की करना है, ये ज्ञान में ही नक्की करना है। और क्योंकि राग भाव जो स्वयं दुख रूप भाव है, वो अपने को उसमें दुख होता है, ये तो अनुभव की चीज है। तो विचार करेंगे, सही अनुमान लगाएंगे, तो ये बातें ख्याल में आ जाएगी। अपने ही उस सहज आनंद को देख, कैसा यह तेरा स्वभाव है और कैसा वह राग द्वेष बैरी है। यह मिट जाता है तो स्वभाव मिटता नहीं है। क्या कहते हैं, राग द्वेष क्षणिक है, दूसरे दूसरे होते रहते हैं, स्वभाव तो कभी नहीं मिटने वाली चीज है, कायम रहता है। यह अज्ञानमय है तो स्वभाव ज्ञानमय है। यह स्वभाव तो सदा रहता है, यह विकार सदा नहीं रहता है। जो सदा रहता है, स्वाधीन है, वो तो पराधीन था ना, तो स्वभाव कैसा है, सदा रहता है, स्वाधीन है, आनंद से भरपूर है, ऐसा तू ज्ञानमय है, विकट स्वरूप विराजमान है। ऐसे अपने भगवान स्वभाव को देखना भूल गया और इन झगड़ों में रम गया। झगड़ों में ने राग द्वेष के अपने विकल्पों में, वही वही स्वभाव देखता है, वही वही सारा देखता क्या प्रश्न है, विकट स्वरूप विराजमान है। विकट नहीं, वो विराट, ऐसा विराट, विराट होता है ना बड़ा,
हाँ,
महान। ऐसे अपने भगवान स्वभाव को देखना भूल गया और इन झगड़ों में रम गया। वही वही स्वभाव देखता है, वही वही सारा देखता है, उसी में बुरा होता है। बुरे विचार से बाहरी पदार्थ बुरे हैं। जब तेरे लिए तू दुश्मन बनेगा तो तेरे लिए तू बुरा है, इसलिए तू तेरे लिए भला है तो दुनिया में तेरा कोई बुरा नहीं। यानी अपने को ही देखना है, अपने स्वभाव मात्र को देखना है, और रागादि अपने लिए बुरे है ये पहले नक्की करना है। अन्य कोई अपना कोई बुरा भला कर नहीं सकता। एक श्रावक व श्राविका की घटना है। वे स्त्री और पुरुष चले जा रहे थे दूर गांव से। आगे पुरुष था और स्त्री पीछे। पुरुष 40-50 कदम आगे निकल गया, स्त्री पीछे रह गई। आगे देखा पुरुष ने कि 30-40 मोहरे पड़ी हुई है। सोचा कि पीछे स्त्री आ रही है, उसका दिल न दुखी हो जाए, इन मोहरों में इसका परिणाम न आ जाए कि मोहरे ले लूं, ऐसा सोचकर मोहरों में धूल डालने लगा। हाँ, हमने ये सुना है। इतने में थोड़ी देर में स्त्री पास पहुंची तो स्त्री ने कहा कि क्या कर रहे हो। पुरुष ने कहा कि 30-40 मोहरे पड़ी थी तो मैं उन पर धूल डाल रहा हूँ। स्त्री कहती कि चलो आगे बढ़े, चलो, क्या धूल पर धूल डाल रहे हो। यानी पुरुष ने तो उसको सोना देख, सोने के रूप में देखा। अरे हमारी स्त्री मोहित नहीं हो जावे इसलिए कहते मैं उसके पर मिट्टी डालती। और स्त्री कहती क्यों मिट्टी पर मिट्टी डाल रहे हो, ये नहीं तो उसको, तो उसको सोना और धूल समान देख रही थी वो। ये हमने स्वामी जी के इसमें प्रवचन में सुना है ना, मैंने भी बोला था। हाँ, सोना दिख रहा है। तो पुरुष के परिणाम में यह आया कि मोहरे है और स्त्री के परिणाम में यह आया कि यह धूल है। परिणाम अपने आप का अपने में होता है। परिणाम ही रक्षक है हमारा और रक्षक कोई नहीं। बुरा परिणाम करके करोड़ का धन आया, यह परिणाम कुछ नहीं है। अच्छा परिणाम करके अगर कुछ टूटा पड़ता है तो कुछ टूटा नहीं। क्या कहते हैं, बुरे परिणाम करके करोड़ों का धन आया तो भी कुछ फायदा नहीं, और कहते हैं अच्छा परिणाम करके अगर कुछ टूटा पड़ता है तो कुछ टूटा नहीं। अच्छे परिणाम का फल मिलेगा, परिणाम निष्फल नहीं जाता। भला परिणाम है तो भला फल मिलेगा और बुरा परिणाम है तो बुरा फल मिलेगा। देखो सबसे ऊंचा परिणाम क्या है, जब सत्य ज्ञात हो जाता है, ज्ञात है नहीं समझ में आता है, तो विश्व का प्रत्येक पदार्थ स्वतंत्र है, अपने अपने अस्तित्व में है, यानी उसकी अपनी सत्ता है, सत है, प्रत्येक द्रव्य सत स्वरूप है। किसी पदार्थ का किसी पदार्थ से कोई कार्य नहीं होता, प्रत्येक पदार्थ स्वतः परिणमता है। इसमें परिणति करने का स्वभाव, क्या कहते हैं, परिणमनशीलता, ये तो द्रव्य का स्वभाव है, परिणति अपने आप स्वयं करे ऐसा स्वभाव ही है। किसी का किसी अन्य के साथ कुछ भी संबंध नहीं। हम कहेंगे वो तो पर्याय नहीं होगी जब तक निमित्त नहीं आएगा, नहीं, तो परिणमना तो द्रव्य का स्वभाव है, उसके स्वभाव में ही ये सब बातें गर्भित। ऐसा स्वरूप में भी मैं एक वस्तु हूं, मैं स्वतः हूं और स्वतः परिणमन स्वभाव लिए हुए हूं। मतलब पहले हमें तो समय दर्शन चाहिए, हमें तो ऐसा चाहिए, हमारा कौन क्या करेगा, कैसा निमित्त मिलेगा, कहाँ जाना है, अभी महाविदेह में जन्म लेना है, तो क्या माना हमने, मैं परिणमन स्वभाव से रहित हूं और कोई आकर हमारा परिणमन हैंडल मार दे तो होगा। मेरे से दुनिया का कोई संबंध नहीं, ऐसा ज्ञानी हूं, ऐसा ज्ञानी हूं मैं। फिर जब ऐसा परिणाम स्वभाव है तो फिर अब किसको बिगाड़ सकूं, किसको अपना सकूं, किसे छोड़ सकूंगा। वस्तु तो सब पृथक पृथक ही है, उनको तो किया ही क्या जा सकता है। हाँ, विकल्प ही किए जाते हैं, जैसे विकल्प छोड़ना है, अब विकल्प को छोड़ दे तो सर्वसिद्धि है। निर्विकल्पता के साधन में जो आनंद आता है वह अनुपम आनंद है। यानी ऊपर जो बात है ना, भला करेगा, हाँ, पृथक यानी भिन्न भिन्न है, प्रत्येक की सत्ता, प्रत्येक का अपना क्षेत्र अलग अलग है। तो जीव और आत्मा अभी है, सारे जीव और शरीर अभी एक इकट्ठा है कि नहीं, के पृथक है, भिन्न भिन्न है, भले एक क्षेत्र में रहते परंतु तो है भिन्न भिन्न, हर एक की सत्ता भिन्न भिन्न है, हर एक का अपना द्रव्य क्षेत्र काल भाव। हाँ, हाँ, द्रव्य तो गुण और वस्तु तो गुण के कारण अपना अपना कार्य स्वयं करता है, और द्रव्य तो गुण के कारण वो निरंतर परिणमता है। बहुत अच्छा, ये सामान्य गुणों में हमने सीखा ना, ये प्रत्येक द्रव्य का स्वभाव। तो हर द्रव्य अपना परिणमन हर समय कर रहा है, तो कोई दूसरा आके इसका परिणमन करा दे कैसी बात है। आप कहीं नहीं, नहीं परिणमन तो हम करते हैं, परंतु कैसा परिणमन करना है वो तो दूसरा द्रव्य नक्की करेगा, तो ये नहीं होता। प्रत्येक द्रव्य की प्रत्येक समय की सुनिश्चित पर्याय होती है और वो नक्की है, हमारे अनादि से अनंत काल तक की प्रत्येक सुनिश्चित पर्याय है, उसका क्रम भी निश्चित है, कोई ना आगे पीछे होता है, ना कोई उसको टाल सकता है, ना कोई दूसरा आकर उसको थोड़ा हेर-फेर करा दे, ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि हमने द्रव्य का स्वरूप ही निश्चित नहीं किया। द्रव्य तो अनंत गुणों का समूह है ही, सुनिश्चित अनादि अनंत पर्यायों का भी वो समूह है। अब उसमें क्या गुंजाइश है किसी के अन्य से कुछ उसमें हेर-फेर करने की, ना हम किसी में कुछ कर सकते हैं, ना हमारा कोई बिगाड़ सकता है। तो देखो कितनी स्वतंत्रता और निश्चिंतता हो जाती है, नहीं तो हम निमित्त की ओर तो देखते रहते हैं, ये हमारे कब होगा, कौन सा निमित्त मिलेगा, हम कैसे करेंगे, और विशिष्ट पर्याय की तरफ आशा लगा के ये कब हमको समय दर्शन होगा, ख्याल में है? अरे मैं तो स्वभाव की हमको महिमा करनी है, और स्वभाव की जिसकी महिमा आती है उसको तो समय दर्शन होने से रहा, उसका समय निश्चित है कि नहीं अपने पर्याय में, पूरे पर्याय क्रम में वो भी निश्चित है, सुनिश्चित है। इसलिए क्या चिंता मिट गई ना सारी, ये तो विकल्प करता रहता है और आकुलित होता रहता है, ये कहना चाहते थे। यहाँ लिखा ना निर्विकल्पता के साधन में जो आनंद आता है वो अनुपम साधन है। ये विकल्प छोड़ू छोड़ू ये भी नहीं रहते, हम तो इस राग से जुदे हैं पहले ये नक्की करना है, और ज्ञान को अपने में, अपनी महानता आएगी तो ज्ञान अपनी ओर मुड़ेगा, अपनी महानता ही नहीं आएगी तो कैसे मुड़ेगा वो। देखो अभी यहाँ कुछ महिलाएं जाप भी कर रही, कोई पाठ भी पढ़ रही है, देखो एक बात का ही विकल्प कर लो और कहीं किसी में बात में न लगो, जो अपना है उसमें ध्यान दो, और संयम क्या है। यानी वो तो लौकिक उदाहरण दिया है, वो जाप करते ने क्या है, उन्होंने अभी बाकी विकल्पों से हटकर एक विकल्पों पर केंद्रित कर लिया, ये कहना चाहता। हाँ वो जाप देते देते घर की सोचते उसकी बात नहीं कर रहे जो अपना है उसमें ध्यान दो, अपना है ना स्वभाव ही अपना है, उसी में ध्यान देना है, उसी को जानते रहना है। ध्यान और क्या होता है, उसी को जानते रहना, और संयम क्या है, यानी संयम भी दूसरा और कुछ नहीं है। हमें संयम है ना, बाहर ही इतने त्याग किया, बाहर इतना व्रत किया, वो तो संयम नहीं, परंतु ये संयम अपने को सम्यक प्रकार से अपने अंतरंग में स्थिर करना, यही संयम है, यही तप है, यही सब कुछ है। हमने देखा था अभी समाधि तंत्र में, यही समाधि है। अगर ऐसी इच्छा न करो कि हमारे चारों काम हो जाए, पूजा भी हो जाए, पाठ भी हो जाए, नियम भी हो जाए, सुबह के प्रवचन में भाग भी ले, चारों की चिंता न करो, मगर एक ही काम करो कि राग को अपने से बाहर करना है। बाहर करना है का अर्थ होता है स्वभाव राग से रहित है ये नक्की करना है। उसको कहेंगे राग को छोड़ा, उसको कहेंगे राग को कम कर दिया, उसको कहेंगे विकल्पों को छोड़ा, अपने स्वभाव में उसको मत जगह दे दो, है ही नहीं उसके स्वभाव में, तो है ही नहीं है, तो नक्की करना पहले। और करने का काम क्या है, बाहर के काम न करो, तेरा साथी है ही कोई नहीं, बाहर के काम न करो नहीं तो कुछ कर ही नहीं सकता बाहर। तो कहते तेरा साथी तू ही है, तू भले परिणाम से रहा तो तेरा साथी तू ही है, और यदि राग परिणाम से रहा तो तू ही अपना बैरी है। देखो भले परिणाम का अर्थ पुण्य परिणाम नहीं लेना, भला परिणाम है ना वो राग से रहित वाला, अपने में स्थित वाला परिणाम, वो भला परिणाम। अपने लिए क्या भला है, पुण्य पाप करते रहेंगे तो उसके फल भी भोगते रहेंगे, वो तो राग है ना, पुण्य भी राग है और पाप भी राग है, शुभ राग अशुभ राग दोनों राग है। हाँ संसार तो बड़ा, क्योंकि अनादि से वही के ना, अनंत बार मरा ये, और क्या क्या बताए ना अभी उन्होंने। बच्चे लोग यह खेल खेलते हैं, एक घड़े में पानी भर दिया और दो फिरने के डंडे तोड़ लिए, एक एक हाथ बराबर के, दोनों डंडों को कलम की तरह का बना लिया, उन दोनों डंडों को जोड़ दिया, उसमें लगा दी मिट्टी, एक डंडा डाल दिया घड़े में, बाहर से जो डंडा दूसरा है उसे मुंह से जरा सा चूस लिया, अब उसमें से पानी पिया, अब मुंह दूर कर लिया फिर भी पानी गिरता जाएगा, सारा घड़ा खाली हो जाएगा। साइफन देखो, हम अभी ये छोड़ दो, हमारे पास कोई नली है रबर की, हाँ तो हम पहले वो उसमें डालेंगे, और फिर उसको नीचे से जोर से हवा खींच लेगी तो पानी बहने लगता है। फिर तो हम मुंह निकालें, मुंह का पानी फेंक दो तो क्या होता है, वो तो पानी गिरता रहता है। साइफन एक्शन कहते हैं ना उसको। एक बार ऐसा आना चाहिए विकल्प छोड़कर, अपने आप के विकृत व विकल्प को छोड़कर अनुभव तो करना चाहिए एक बार जीवन में, फिर बार बार तो अनुभव करेगा। यानी एक बार वो तो चूस के वो चालू किया पानी तो जैसे वह बहता रहता है, जैसे एक बार तो अनुभव कर ले तो बारंबार उसके वो तो हाँ तो उसके प्रति तो सदैव बनी रहेगी, वही आनंद दाता है। एक बार ही यदि आत्मीय आनंद का अनुभव हो गया तो आनंद के स्मरण में भी सुखी रहेगा। आनंद की उपेक्षा न कर, उसका आनंद ही जीवन भर आनंद देता रहेगा। उसका ज्ञान ही जीवन भर आनंद देता रहेगा। पर वह आनंद कैसे आए? बाहर के सारे पदार्थों में मोह न डालो, मोह डालकर नफा नहीं मिलेगा। हमको ये भी करना है और बाहर का भी करना है, बाहर की भी बहुत रुचि है और इसकी भी रुचि है, क्या करेंगे? तो वो सच्ची रुचि भी नहीं कहलाएगी।
हमको संसार में रह के धर्म करना है, बाहर के सारे पदार्थों में मोह न डालो और वो तो मोह करके धर्म करना चाहते हैं, कैसा मोह
गृहस्थ अवस्था में ये करने लायक है। ये बात उसने घरदार तो छोड़ा नहीं है ना, अविरति है उसके, बाल बच्चे धंधा सब कुछ है और समय दर्शन प्राप्त कर सकता है कि नहीं कर सकता? उसके लिए कुछ सभी छोड़ने की बात नहीं है। तो ये तो केवल क्या कह रहे कि राग से जुड़ा अपने को अनुभव करना है, बस इतना ही करना है। बाहर के सारे पदार्थों में मोह न डालो, मोह डालकर नफा नहीं मिलेगा। अच्छे परिवार आदि में लग लो, ज्यादा से ज्यादा 10-20 वर्ष तक होगा क्या? 10-20 वर्ष के बाद प्रथम तो यह बात है,
अच्छे परिवार आदि में लग लो क्या?
ये क्या कह रहे हैं? वो तो बता रहे आप अच्छे परिवार में समझो लग जाए तो 10-20 वर्ष ऐसे हमने बिता दिए तो क्या होने वाला है? 10-20 वर्ष में मन भर जाएगा क्या? परिवार से मन भर जाएगा क्या? नहीं भर जाएगा तो कहते नहीं। ये तो समझा रहे कैसे कि अच्छे परिवार में लग रहे तो हमें परिवार मिला, हमने शादी
अच्छा परिवार में, परिवार में भले तो अच्छे लगे अच्छे परिवार में
आदि में लगे रहो।
अच्छा परिवार है ऐसा नहीं, आप भले परिवार में लगे रहो 10-20 वर्ष बाद भी
तो क्या मिलने वाला है? हाँ तो और अटैचमेंट बढ़ेगी ना, हम कहेंगे क्या कहेंगे और राग तो कहते 10-20 वर्ष में भी मन नहीं भरेगा ये कहते। वो आती है ना स्टोरी, एक आदमी था, अरे भगवान मुझे उठा लो, मुझे मोक्ष चाहिए मोक्ष चाहिए, कहता है तो भगवान आ गए, उनके अन्यमति का था मालूम है ना वो क्या? नहीं सुनी बताए थे ना? हाँ हाँ अभी नहीं, उससे चलो अभी मैं तुझे ले चलता हूँ मोक्ष ले चलता हूँ, अभी नहीं अभी तो अभी बच्चा छोटा है तो फिर बच्चा बड़ा होगा, अरे अभी उसकी शादी करनी है, अभी शादी हुई ना चल, नहीं नहीं अभी तो उसकी शादी हुई, अभी पोता होगा, पोता हुआ अभी तो चल, अरे उसको जरा बड़ा होने दो, उसकी शादी है तो उसकी चल रही है, तो आखिर कहते कोई मुझे मिला नहीं के तुझे मैं ही मिल गया। अच्छे लगे रहो, दिन में कुछ परिणाम है, सुबह कुछ परिणाम है, शाम को कुछ परिणाम है, यह तो पराधीन व विकृत चीज है। मोह किया तो संसार में दुख ही रहेगा, अब छूटा तो छूटा सही। सो मैं अपनी इन राग द्वेष बुराइयों से हटकर किसे हटना है? पहले परिवार को छोड़ने की बात नहीं, अपना राग द्वेष से हटना है। भले स्नेह है उससे मैं जुदा हूँ, ये नक्की करना है पहले। अपने बच्चों के प्रति, अपने परिवार के प्रति स्नेह होगा कि नहीं, प्रेम होगा तो कहते उससे मैं जुदा हूँ, मैं तो ज्ञायक हूँ, मैं तो चैतन्य स्वभाव में हूँ। तो अपने इनसे हटकर स्वाभाविक रूप स्वभाव में आकर, स्वभाव हमारा स्वाभाविक है, वो कृत्रिम नहीं है, पराधीन नहीं है। अपने में, अपने लिए, अपने आप सुखी हों, यह निश्चय समझो कि मेरा आनंद मेरे से दूर नहीं है, क्योंकि मैं ही आनंद स्वरूप हूँ। मेरे में ही है सारा, मेरे से दूर नहीं है। बाहर के किसी भी पदार्थ से आनंद की किरण नहीं आती कि जिसमें आनंद भरा हुआ हो, ऐसा परचैतन्य पदार्थ से भी आनंद नहीं आता। क्या कहते, प्रत्येक चैतन्य में अपना अपना आनंद भरा है, परंतु अन्य चेतन से हमारा कोई आनंद नहीं आता। मैं चैतन्य जो आनंद मैं हूँ, अपना आनंद अपने में ही भरा हुआ है, बाहर से कहीं से वो आता ही नहीं। उनका आनंद उन्हीं में है, मेरा आनंद मुझ में है, कोई किसी का नहीं है। जो मोह के समय बड़ा अच्छा लगता है, उस प्रभु की प्रभुता की दुर्गति करने वाला तू ही एक है। मैं स्वयं प्रभु स्वरूप हूँ और मैंने ही अपने प्रभु की दुर्गति बना रखी है। यदि मोह नहीं है तो यह प्रभु आनंदमय बनेगा, यदि मोह है तो इस जगत में, जागत में हुआ है, इस जगत में जीव नाना संकट सहता रहेगा। क्या कहते
हैं,
निःमोहता की प्रशंसा में श्री समंत भद्राचार्य स्वामी ने बताया है, किस में बताया है, रत्नकरण शाकाचार्य, ये श्लोक 33 होगा। गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहवान, अनगारो गृही श्रेयान निर्मोहो मोहिनो मुने। ये रत्नकरण शावकाचार जो है, नहीं, ये अभी जो देखो, अभी कुंभोज में जो हुए थे ना समंत भद्र महाराज, ये कब, ये बहुत हजारों साल पहले हुए, वर्ष पहले हुए। इनका नाम भी समंत भद्राचार्य था, एक ही नाम के अनेक होते हैं ना। तो क्या कह रहे, देखो, जो गृहस्थ है और मोक्ष मार्गस्थ है, यानी समय दृष्टि है, वही तो कह रहे हो, गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो, मोक्ष मार्ग में स्थ यानी स्थित है, यानी उसने मोक्ष मार्ग प्रकट कर लिया है। और कहाँ रहता है अभी गृहस्थ है, अभी उसने कोई व्रत नियम नहीं अंगीकार किए, ना वो मुनि बना है। तो गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहवान, वो कैसा है, मोह से रहित है, मोही नहीं है। अब अनगारो, अनगारो कैसा है, देखो मानगोस मोह, आगे कहते नैव मोहमान अनगारो गृही श्रेयान, यानी अनगार यानी मुनि, कैसे है मोही मुनि, मोहवान अनगार यानी मोहवान मुनि श्रेष्ठ नहीं है, मोक्ष मार्गस्थ नहीं है। गृही श्रेयान निर्मोहो मोहिनो मुने है, यानी मोही मुनि से निर्मोही गृही, गृही यानी गृहस्थ श्रेष्ठ है। अभी उसका सरल फिर से ये कहना चाहता है, कोई जो है गृहस्थ है, चौथे उन्नस्थान वाला है, सम्यक दर्शन हुआ है, आत्मा का अनुभव किया है, उसके तो कोई व्रतादि नहीं है, अविरत समय दृष्टि है वो, तो कोई मुनि है, घरदार छोड़ दिया है, जंगल में रहते हैं और बरोबर सब पालन कर रहे, और मिथ्या दृष्टि है, तो उन मुनि से, वो मोही है क्योंकि पहला गुण स्थान है, उनसे ये गृहस्थ श्रेष्ठ है ये कह रहे
हैं। वो जो मोह रखते हैं ऐसे मुनियों की बात, अब वो मोह किसमें हो सकता है, अनेक बातों में हो सकता है, पैसे में मोह है, अपने अपने घर वालों जो जिनको छोड़ के चले आए उनके बारे में मोह है,
या जो शरीर शरीर की क्रिया मेरी है, राग मेरा है, मैं ऐसा पालन करता हूँ इतना अच्छी तरह से दृढ़ता से, मैं यानी वो राग भाव में और शरीर की क्रिया में मैं पना पड़ा है, यही उनका मोह है। क्योंकि अभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ है, यानी मोह पड़ा है ये नक्की है ना, अभी उसी का अर्थ कर रही है। निर्मोही गृहस्थ मोक्ष मार्ग में स्थित है, निर्मोही जिनका मोह निकल गया, यानी दर्शन मोहिनी की बात कर रहे, पर मोही मुनि मोक्ष मार्गस्थ नहीं। मोही कहने से वो मिथ्या दृष्टि है, परंतु बाह्य में मुनि दीक्षा ली है तो कैसे वो मोक्ष मार्गी नहीं है। मोही मुनि द्रव्यलिंगी भी ले सकते हैं, अभी तक आत्मा का अनुभव नहीं हुआ है बस। इस कारण मोही मुनि से निर्मोही गृहस्थ अच्छा है। मोह क्या है कि भीतर में यह भाव आ जाना, यह चीज मेरी है और मेरा जीवन इनसे ही है, यह चीज मेरी उनमें, तो ये तो मैंने जो अभी घर छोड़ा है ये मेरी चीज है, ये तो इस तरह से है और मैं मुनि हो गया हूँ, ये मैं ऐसा व्रत पालन करता हूँ, उसी में उनकी एकत्व बुद्धि हो जाती है राग में और शरीर की क्रिया में। मेरा हित इनसे ही है, मेरा बड़प्पन इन चीजों से ही है, ऐसा भाव है, यानी उसके कारण मैं बड़ा हूँ, इतने लोग मुझे मानते हैं, मैं मुनि हो गया, मैंने इतना त्याग कर दिया, उसमें अपना बड़प्पन मानता है, ये मोह हो गया ना उनका। और ये करने से बाह्य चीजों से मेरा मोक्ष होगा, ये भी मान्यता है वहां पर। तो यही मोह दुश्मन है, बैरी है। अहो, यह मोह अंधेरा इतने बड़े जीवों के है कि पछताने की भी गुंजाइश नहीं, इतनी बड़ी विपत्ति में पड़ा है। यदि यह अंधेरा है कि यह जितने भी पदार्थ है इन्हीं से मेरा जीवन है, यही मेरे सब कुछ है, तो मनुष्य होना व्यर्थ है। क्या मोह है? इनके कारण मैं हूँ, धन के कारण हूँ, मेरे माँ बाप के कारण मैं हूँ, मेरे इनके कारण मैं हूँ, ये क्या है? मोह है, अंधकार। यह लिखा था जितने भी पदार्थ है इन्हीं से मेरा जीवन है, मैंने इतना चुन चुन के इतना कमाया, इतना संयोग इकट्ठा किया, इतने इसके कारण मैं हूँ, अभी कुछ तो हूँ, मैं कुछ नहीं था, अभी मैंने इतना एम्पायर खड़ा कर दिया, मैंने इतने संयोग इकट्ठे कर और अब मैं अभी सुखी हूँ, यानी इनके कारण मैं हूँ, इनके कारण मैं सुखी हूँ।
यहाँ तो बताया जा रहा है मुनियों के बारे में, भले बताए लेकिन हम अपने पे लगा रहे हैं।
नहीं, किसी भी मोही के लिए ये बात बताए, वो तो मुनि की बात ऊपर हो गई दो तीन लाइन में, अभी ये इन जनरल मोह की बात कर रहे हैं। यदि परिणाम बुरा है तो मनुष्य होकर नंबर भी क्यों खोया, कीड़े मकोड़े ही बनना अच्छा था, मनुष्य बनने की गिनती तो नहीं आती। यानी तो मनुष्य भाव इतना दुर्लभ है, तो ऐसा मनुष्य भाव पाकर क्या है, उसकी गिनती में तो उतने तो जो होते हैं वो तो हो चले चले जाएंगे। 2000 सागर के बीच मनुष्य बनकर 23-24 बार के मौके तो आते, मगर मनुष्य बन गया तो मनुष्य के कार्य तो करने थे, मनुष्य के कारण कार्य करने थे, ने मनुष्य में करने योग्य कार्य यही था अपना स्वरूप पहचानना, वो तो किया नहीं, तो उसकी केवल 2 मिले 4 मिले 24 मिले उससे क्या मिलने वाला है। यहाँ जो 23-24 बार के मौके जो बताया है, अधिक से अधिक किसी जीव को लगातार की बात आती है, लगातार अगर मिलते हैं तो 48 भव मिलते हैं पर्याप्त, 24 यानी स्त्री के 8, पुरुष के 8, नपुंसक के 8, फिर अपर्याप्त भव बीच में, और फिर 8 8 8 24, ऐसे लगातार किसी को मनुष्य भव मिले तो इतने मिलते हैं एट रैंडम। हाँ, बीच अपर्याप्त लेंगे तो ही ऐसे होते हैं, एक हो या अंधे को, अधिक से अधिक 8 लगातार हो सकते हैं अपर्याप्त हमको,
8
भी हो सकते हैं, पर वो सब मिलकर भी अंतर्मूर्त है। और हम वो अंतिम भव उसको पल्ले 3 पल्ले वाला लेंगे तो यहाँ कितने, ये 24 और वो 23, 47 पूर्व कोटि प्लस 3 पल्ले, हाँ वो भूमि सहित वाला, इतने मनुष्य में रहने का उत्कृष्ट काल कहते हैं उसको, कहेंगे पृथक्त्व पूर्व कोटि प्लस 3 पल्ले। ये कहने की पद्धति है आगम की,
लगातार
की बात। दूसरा किरियंचा वगैरह का नहीं करते हुए इतने लगातार हो सकते, इससे अधिक नहीं, एक बात। और ये सबको मिलता ऐसा नहीं, किसी के हो तो हो, ये भी हो सकता है कि 2000 सागर स्त्रस की मिली स्थिति, उसमें एक भी मनुष्य पर्याय न मिले, ऐसा हो सकता है। परंतु तिरंज में गया ही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ ये हो सकता है कि वो देव में ही गया नहीं, ये हो सकता है कि नरक में ही नहीं गया, ये हो सकता है मनुष्य में ही नहीं गया। तिरंज तो होगा क्योंकि वो तो इतने अमुक पृथक सागर के बाद तो लौट कर तिरंज होगा ही होगा। हमने ये बात पहले भी सिद्ध की थी, हो सकता है कि कोई जीव पुरुष वेदी रहा, पुरुष वेदी रहा है ने वो नरक में जाने का सवाल नहीं, तो पुरुष वेदी रहा और उसने तिरंचायु एक बार तो बांधी, पहली तो एक बार बांधी, इसको अंतर कहते हैं। तो ऐसे जीव ने फिर दोबारा लंबे काल तक तिरंचायु बांधी ही नहीं और मैक्सिमम अंतर के बाद बांधी, तो कितना अंतर उत्कृष्ट हो सकता है। तो पृथक्त्व 100 सागर, समझाने के लिए हम कहेंगे 900 सागर, तो 900 सागर में उन्होंने कौन से भव किए, पॉसिबिलिटी क्या रही अभी, देव और मनुष्य 900 सागर तक, यानी कितनी बार मनुष्य होगा बीच में, क्योंकि कोई भी लगातार देव से देव में नहीं जाता, और उसमें छोटे आयु वाले भी देव बहुत बार लेने पड़ेंगे, क्योंकि ऊपर के स्वर्गों में बार बार जन्म नहीं होता, वहां पर यहाँ आया फिर गया फिर आया फिर गया, ऐसा नहीं लगातार होता नहीं ज्यादा। कौन से स्वर्गों में से कितने बार वहां जन्म ले सकता है कॉन्सिक्यूटिव, उसकी भी लिमिट है। तो इसका अर्थ क्या लिया, अनेक बार वो मनुष्य हो सकता है, 48 की बात है वो लगातार की बात। फिर भी यह जो कुछ उसको मौके आने हैं मनुष्य बनने के, भले उसको मौका मिला भी और उसने उसका कुछ फायदा नहीं उठाया, तो जैसे अनंत बार अभी तक अरे ग्रेवेक मुनि भी हुआ था, ग्रेवेक में भी गया था द्रव्यलिंगी होकर, कितने एक दो बार नहीं अनंत बार, तो क्या चुक गया उसका, ये शरीर और वो राग आदि क्रिया में एकत्व बुद्धि छूटी नहीं, राग से भिन्न पड़ा नहीं, ये उसकी चूक हो गई, ये कहना चाह
रहे।
देखो हमको जरा उसमें बोलना, आप प्रश्न आपको पूछो,
आपने कहा टोटल 24 और 23 यानी 47 बार
पूर्व कोटि के भव के कर्म भूमि के,
कर्म भूमि और अंतिम वो 3 पल्ले का,
हाँ क्योंकि 3 पल्ले के बाद देव में जाने वाला है ना,
वो देव से वापिस होकर वापिस मनुष्य में आया,
हाँ
तो क्या वापिस ऐसे 48 भव कर सकता है,
हो सकता है, ऐसे उसकी चर्चा नहीं है आगम में ज्यादा, पर उसमें कोई रुकावट नहीं है, लगातार इतने कर सकता है, बस इतनी बात। देव में जाएगा ना वो, अब भोग भूमि से जाए, देव में गया,
हाँ
हाँ अनेक भव हो सकते
हैं,
बिल्कुल नहीं है
47 प्लस 48 भी हो सकता है,
ये लगातार की बात है। 2 सागर 2000 सागर में मात्र 48 मिलते, ऐसा कहीं पर ही नहीं लिखा है,
और वो कितनी भी बार सकते हैं 48,
हाँ उसकी चर्चा नहीं आई है, मगर इतने उत्कृष्ट लगातार की, क्योंकि मिथ्या दृष्टि है, मनुष्य मनुष्य बांधता गया, इससे अधिक बार नहीं बांधेगा, ये लिमिट लगातार इससे अधिक नहीं बांधेगा, वो ऐसा कुछ नहीं। देखो भोग, ये हमारी जो है वो कर्म भूमि कहलाती है, भोग भूमि जो है अभी अपना भूगोल का यहाँ अपने पढ़ा नहीं है, वहाँ ऐसी स्थिति होती है कि वहाँ कल्प वृक्षों से वो सारा मिलता है, चीजें मिलती है और वह भोग की प्रचुरता है, और वहाँ तो उत्कृष्ट आयु 3 पल्ले की होती है, परंतु वहाँ गुणस्थान 4 तक प्राप्त कर सकता है, 1, 2, 3, 4, उसके ऊपर मुनि होना या मोक्ष होना वो वहाँ से नहीं होता। वहाँ से जो मरकर नियम से देव में जाते हैं, मिथ्या दृष्टि वो भवनत्रिक में जाएंगे, समय दृष्टि सौधर्म ईशान में जाएंगे, और वहाँ से लौट कर फिर जो यथायोग्य मनुष्य में आ सकते हैं, मिथ्या दृष्टि एक केंद्र में जा सकते, कुछ भी हो सकता है। भोगों की प्रचुरता है वहाँ पर,
कर्मभूमि के मनुष्य की संख्या ज्यादा है कि भोगभूमि के मनुष्य, एक सेम ही है?
आप बोलो।
मेरा तो ऐसा मानना है भोगभूमि के मनुष्य की संख्या बहुत ज्यादा है।
क्यों?
क्योंकि ये मैंने सुना है गुरुदेव के प्रवचन में कि कर्मभूमि के मनुष्य की अभी ये उसका वो मिला नहीं है, वो 27, 9, 9, 9, 9, 9 होता है और 29 तक 28 अंक 9, 9, 9 होता है और वो गिर के कर्मभूमि के एक 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 28 बार होता है, इसलिए मैंने ये कहा। लेकिन एट एनी टाइम वो भोगभूमि या तो उससे 72 टाइम्स या उससे भी ज्यादा होगी, क्योंकि ये 29 अंक प्रमाण है और 7 से स्टार्ट होती है।
देखो इसलिए है कि वो पल्लों में यानी असंख्यात उसके अनंत असंख्यात भाग में वो असंख्यात ये पूर्व कोटियाँ होगी, संचय की अपेक्षा वहाँ ज्यादा जीव हो सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं, संचय होगा ना वहाँ पर, नहीं समझे? देखो जैसे नरक की आयु कितने पहले नरक की, जो यहाँ से सम्यक तो लेके जाता है मनुष्य में से ही जाता है, कौन सा क्षायिक सम्यक तो लेके जाता है, तो मनुष्य से ही जाता है, लेकर जाता है, और फिर 6 महीने में वो दर्शन मुनि की कोई यानी 6 महीने का अंतर भी पड़ सकता है, यानी 6 महीने में मान लो ना 2-4 जाएंगे कभी, तो मनुष्य तो संख्यात है, क्षायिक समय तो प्राप्त करने वाले भी संख्यात है, और पहले नरक में क्षायिक समय दृष्टि असंख्यात है, क्योंकि सागर की इतनी बड़ी आयु है यानी इतना बड़ा काल है कि उसमें हर 6 महीने जाते रहेंगे तो वहाँ उनकी संख्या ज्यादा होती है, इस अपेक्षा से हम कह सकते हैं उसमें वो असंख्यात है, समूर्छन मनुष्य असंख्या, नहीं नहीं वो पर्याप्तों की बात है। वो क्योंकि 3 पल्ले में, 2 पल्ले में और 1 पल्ले में, क्योंकि वहाँ संचय ज्यादा है उनका, हो सकता है। वो तो उत्कृष्ट
कर्मभूमि ना जे छे અહીંયા આગળ જ્યારે કર્મભૂમિ હોય છે ત્યારે કર્મભૂમિ ની સંખ્યા એટલે જ્યારે અહીંયા આગળ તમે 4th, 5th, 6th ભૈરવ ને એરાવત માં ચાલે છે ત્યારે એની સંખ્યા બહુ વધી જાય, એની વધીને આટલી જ થાય છે 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 28 અને ઘટીને એક 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 કેમ ગુરુદેવનું માનવું કે પ્રવચનમાં આવ્યું છે મેં લખેલું મેં આપકો एक बार पूछा भी था कैसा उनके प्रवचन में आया है तो क्या बात,
क्योंकि संचय वहाँ के क्योंकि पल्ले बहुत बड़ा काल है, असंख्यात करोड़ वर्षों के जो और वो भी आधा पल्लों में है, व्यवहार पल्ले नहीं है ना उद्धार पल्ले, आधा पल्ले बहुत बड़ा काल है, और ऐसे 3 पल्ले की तो कांस्टेंट भूभूमिया भी है अनेक जगह, यहाँ की बात नहीं, हमेशा जहाँ भूभूमिया है ढाई द्वीप में जो 5 मेरु है, 5 मेरु संबंधी उत्कृष्ट मध्यम जघन्य भूभूमिया तो है ही है वहाँ पर। हाँ असंख्यात नहीं, अरे मनुष्य असंख्यात नहीं हो सकता, तीरियंच असंख्यात होता है,
ये 7 से स्टार्ट होता है ना, और वो बढ़ बढ़ के भी कितना जाता है 28 अंक प्रमाण जाता है, माने 28 अंक प्रमाण 9, 9, 9 जाता है, उसमें एक भी ऐड कर लो तो खाली एक ही आता है, तो उससे वो 7 गुना हुआ, सॉरी 7 टाइम्स और घट के उतना टाइम।
हाँ देखो अभी हम आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ आए थे, 23-24 बार की बात आई थी ना, एक और है 5 मिनट अपने मिल गया। 23-24 बार के मौके आते हैं, मगर मनुष्य बन गया तो मनुष्य के कार्य तो करने थे। यानी हमने इसमें यही बात लेना है कि मनुष्य बहुत दुर्लभ है और ऐसा मनुष्य मिला है, मनुष्यपना मिला है उसको। इतना ही नहीं, अभी इतने यहाँ तो हमें जितने मालूम है मनुष्य वो कितने हैं। अभी जिसको हम कहेंगे ना, हमारे ये तो भारत में है, अमेरिका में, इधर है, उधर है, उधर कितने सारे जीव है, तो उनमें कितनों को ये जैन धर्म की बात सुनने को मिली है। और जैन धर्म में भी बहुत वो ये करो वो करो कहने वाले बहुत है, ये सही बात कितने लोगों को मिली है, और जो सुनते हैं वो उसमें से कितनों ने उसको स्वीकार किया कि नहीं नहीं यही करने लायक है। तेरे सब में दुर्लभ 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 चीजें हमें प्राप्त हुई है। अब कहते यहाँ पर भी अपना कार्य नहीं करेगा तो क्या होगा तेरा, ये कह रहे क्या फायदा। अगर यह विषय कषाय करना ही था तो कीड़े मकोड़े बनते, क्या कहा, उनके भी अपने अपने इंद्रियों के जो कुछ भोग सामग्री वहां पर भी उपलब्ध है। हाँ, मनुष्य बना क्या, यहाँ पर भी उसने इंद्रियों के भोग भोगे, कीड़े मकोड़े ने क्या किया, उन्होंने भी भोग किए। एक कहावत है, ये दिल्ली रहे 12 वर्ष रहे, क्या काम किया, भाड़ झोंका, भाड़ समझते ना, भड़बुंजा, वो तो चने सेकते हैं, वो तो रेत वाले जो ऐसे है ना उसके अंदर वो तो सेकते हैं ना, हाँ भाड़ झोंका, मराठी में उसको भड़बुंजा कहते हैं। वो चने बनाते, चने फुटाने, वो बट्टी, हाँ वो तो कभी देखिए क्या हाँ रेत में करते, हम पुणे में जाते थे, वो बहुत बहुत बड़ी भट्टी थी उसको, और देखते रहते तो कैसे करते हैं। अगर भाड़ झोंकना था तो क्या भाड़ यही गांव में ना झोंक दिया जाता, विषय कषाय में रहे, बुरे कामों में रहे तो मनुष्य होकर क्या किया, पशु हो जाते, कोई भी अन्य पर्याय मिलती उससे कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला, वहां पर भी वही किया, यहाँ पर भी वही कर रहा है। संगी बनकर खोटा बना तो उसकी दुर्गति ज्यादा होती है, क्या कहा, नहीं समझे, एक इंद्रियादियों को ये तो नरक में नहीं जाते, और ये संगी बना बनकर जो उसने ये किया तो उसकी ज्यादा दुर्गति होती है, कर्मबंध भी जो अधिक हो जाता है उसका। अंतर से देख हम कैसे आनंदमय है, हम कैसे ज्ञान मात्र है, जो भगवान है वह मैं हूं, इतना पवित्र मैं हूं। यानी अपने को राग में मानकर पूरा अपवित्र उसने मान लिया, वो है तो इतना पवित्र जैसे भगवान जैसा है। भगवान को तो नमस्कार करता एक रूटीन बना लिया कि सुबह नमस्कार किया, फिर उनको प्रक्षाल किया, फिर उनकी हमने अष्टद्रव्य से पूजा की, फिर ऐसा किया नमस्कार किया। अरे पर तू भगवान स्वरूप है कभी निश्चित नहीं किया, वो दर्शन करना था तो अपने स्वभाव के दर्शन हो रहे, ऐसा कभी भाषित नहीं हो रहा इसको, बस एक मूर्ति है, ये हमने मूर्ति की, हमने ये रूटीन बना दिया। अभी जो नहीं करते जो कर रहे हैं उनकी क्या भूल है, वो तो चले अपने स्वरूप को भूलकर बुराइयों को अपना लिया, स्वरूप भूल गए अपने, उसके नक्की किया ही नहीं क्या स्वरूप है, इन धोखे वालों को अपना लिया। कौन धोखे वाले, हाँ राग द्वेष, बाकी दूसरों को दोष मत दे दो, अपने ही राग द्वेष। भेद करना है तो धन उसका नहीं, दौलत उसकी नहीं, यह तो ऊपरी बात है, भेद यह करो कि राग द्वेष अपने नहीं, क्या कहना, ये शरीर में नहीं हूँ, धन में नहीं हूँ, ये क्या भेद कर रहे हो, ये राग द्वेष मेरे नहीं है, मैं उस रूप नहीं, ये नक्की भेद करना है, यह लिखा। अरे ये तो ऊपरी बात है, भेद यह है कि राग द्वेष अपने नहीं है, यानी भेद ज्ञान तो यहां करना है राग द्वेष से। हे राग वैरी, अब तू नष्ट होने के लिए ही तो आया है, मिटने के लिए ही तो आया है। ये राग आदि आते हैं तो आ जाए, मिट जाए, तो ये सर्वज्ञता में बाधा डालते हैं, ये तो सर्वज्ञता में बाधा डालते हैं। मैं तो सहज आनंदमय हूँ, इस तरह से अपने में हुए रागादि को आस्तीन का सांप जैसा कहा है। कौन से शुभ राग को भी हो, अकेले क्रोध को लेला नहीं, राग राग जब होता है तब
आस्तीन का सांप की क्या विशेषता
है? अपनी ही कमीज में आस्तीन में सांप बैठा, आस्तीन समझते, ये शर्ट जो बाहे हो वो आस्तीन है और उसमें नहीं अपने कमीज में आस्तीन में सांप बैठा, कमीज के जो बाहे क्या कहते उसको, भाई भाई, हाँ भाई बाही, अपने ही प्रदेश में यह विष विकार जन्मा है, क्या कहते हैं, वैसे जो कमीज में वो सांप है, ये हो गया समय हो गया, ये भी कल ही देखेंगे ये दृष्टांत और वो हाँ? अच्छा है, यहाँ से पढ़ेंगे कल। जावानी के ज्ञान तय सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तकनम सदा देत हो नलिन भाई।
नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहितोषाणं नमो आर्यं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहितोषाणं नमो आर्यं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहितोषाणं।